कला की अधिष्ठात्री राज नर्तकी देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा अकाल में काल कवलित हो गई थी। देवी इस शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रहीं। संपूर्ण सागल नगरी मल्लिका के शोक से 2 वर्षों तक शोकातुर और नीरस रहकर रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही। देवी मल्लिका ने वीणापाणी देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्य निष्ठा से अपने असहाय शोक सहकर मन को वश में किया। उन्होंने निश्चय किया चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधुपर्व उत्सव के समय समाज में पुनः प्रवेश करेंगी। सांगल के मनोहर और विशाल ताल पुष्पकर्णी में जल और तट पर जन लहरे ले रहा था। सूर्यास्त में अभी एक पहर शेष था, परंतु जहाँ तक दृष्टि जाती जनसमूह उमड़ रहा था। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैल गई नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। मंडप कलशों कदली स्तंभों तोरणों वसंत आरंभ में पल्लवित आम्रपत्र के वंदनवारों और मंजरियों से सुसज्जित था। वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध और सुगंधित धूमों से सुरभित था। सिर पर ऊंचे सिर ताण बांधे, पीठ पर ढाल लटकाए, हाथ में भाला लिए राजपुरुष उत्सुकता से उमड़े जन प्रवाह से मंडप के मार्ग और मंडप में गण परिषद के सदस्यों सामंतों अभिजात वंशजों अग्रश्रेष्ठियों श्रेष्ठ जठकों और कुल नारियों के स्थानों की रक्षा कर रहे थे। सूर्य क्षितिज से उत्तर जाने पर सुश्री सबल अश्वरोही भद्रगण के रथ सुंदर वस्त्र धारण किए दुतगामी शिविका वाहकों के कंधों पर शिविकाएं और अश्वरोही भद्रगण जन प्रवाह के बीच सुरक्षित मार्ग से मंडप की ओर आने लगे। मंडप के सोपान पर खड़े चारण तुरही बजा बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। गण परिषद के सदस्यों और विशिष्ट गण के मंडप में प्रवेश करने पर चारण उनके नाम वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट आसन दे रहे थे। भद्र समाज के रथ अश्व और सेविकाएं आरोहियों को मंडप द्वार पर छोड़कर उनके चवरधारी दासों और कंचुकियों सहित मंडप के दक्षिण भाग की परिक्रमा करके पृष्ठ भाग में जा पक्तिबद्ध खड़े होने लगे। अभिजात पुरुष और कुलनारियां अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल और पर्व के योग्य वस्त्राभूषण धारण किए थीं। ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कढ़े लाल रेशम के उष्ण शीशों के सिरों के कंधों को बांधे थे। उनके मस्तक और भुजाओं पर श्वेत चंदन का खौर था। उनके समस्त मुंडे हुए थे। उनके कंठ की मुक्तमालाओं में कृष्ण रुद्राक्ष शोभित थे। कंधों से लहराते उत्तरी के नीचे अस्पष्ट झलकती रेखाएं कट से नीचे स्वच्छ अंतरवासक पर पीत यज्ञोपवीत के रूप में प्रकट थी। कांच लगे स्वच्छ अंतरवासक पाद त्राण को स्पर्श कर रहे थे। छत्री स्वर्ण खंचित शुभ्र वस्त्र धारण किए थे। ऊंची लंबी नाक के नीचे मूछें दो बिच्छुओं के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ी गई थी। उनके कानों कंठ भुजाओं और कलाइयों पर रत्न जड़ित आभूषण थे। विस्तृत वक्षस्थल से सूक्ष्म कोटि तक शरीर चुस्त अंगरखों से मढ़े थे। कट से जानू तक कांच कसे अंतरवासक पिंडलियां और पांव पादत्राणों में कसे हुए थे। कट से रत्न जड़ित मूठ के खड़ग झूल रहे थे। श्रेष्ठियों के वस्त्र बहुमूल्य परंतु ढीले ढाले थे। गण परिषद के सदस्य कंधों पर केसरी कंचुक धारण किए थे। कुछ यवन सामंतों के सिर पर चोटीदार टोपियां घुटनों तक अंगरखे पायजामे और पांव में ढीले जूते थे। कुछ ने आर्य वेश अपना लिया था। कुछ कुलनारियों के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्त लड़ियों द्वारा विविध प्रकार से गूंथे गए उनके केसों पर पुष्प के अर्धचंद्र किरीट शोभायमान थे। मस्तक कान कंठ बाहुमूल्य कलाई और अंगुलियां चंद्रिका तुलिका लेखन कुंडल हार माला अंगद वलय और अंगूठियों से संजित थे। उनके कंधों पर अनेक बल खाए झीने उत्तरी के नीचे मेरुदंड पर गांठ बांधे कंचुक वस्त्र सम्मुख वच्छ की ओर फैलाकर सुचकर्ण वर्तुलों में उभर आए थे। ऊपर पुष्ट उरोज और नीचे पृष्ठ नितंब डमरू मध्य के समान कट पर स्वर्ण की मेखलाएं रत्न जड़ित नीविबंध से तीन लड़ियों में कटी नितंब के मध्य और अधोभाग की परिक्रमा कर वर्तुल आकारों को स्पष्ट कर रही थी। मेखलाओं की लड़ियों में किंकिणियां झूल रही थी। मेखलाबद्ध से उनके साटक मयूर पुच्छ के रूप में फैल कर आलत्य रंजित और आभूषणों में श्रेष्ठ चरणों के नीचे विछे आस्तरणों को स्पर्श कर चरणों को छिपाए थे। उनके चारों ओर अनेक पुष्पों की सुगंधियां दूर तक फैल रही थीं। प्राय सभी यवन रमणियां आर्य स्त्रियों का वेश अपना चुकी थीं। आकाश में चैत्र की चांदनी छिटक गई। वेदी के चारों ओर तथा मार्ग पर दीप दंड प्रज्वलित हो गए। वयोवृद्ध मिथोद्रश महाप्रतापी धार्मिक यवनराज मिलिंद के राज्यकाल में मद्र समाज के महासेनापति थे। मद्र के गणराज्य में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार कर लिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर मंगल वाद्य और मंगलाचरण आरंभ हुआ। वेदी के सोपान पर खड़े चारण ने पुनः तुर्यनाद करके घोषणा की, कला की अधिष्ठात्री नगर श्री राजनर्तकी देवी मल्लिका सभा स्थल में पधार रही हैं। जनसाधारण इस घोषणा के झंझावत से तरंगित हो उठा। जनसमूह की गिरवाएं उठ गईं और दृष्टि मार्ग के पश्चिम छोर की ओर चली गईं। दीप दंडधारी अश्वरोहियों के पीछे रथ चले आ रहे थे और रथों के पीछे दीप दंडधारी अश्वरोही। रथ शीघ्र ही मंडप के समीप जनप्रवाह में आ पहुंचे। सब ओर से कला की देवी नगरश्री देवी मल्लिका का जयघोष होने लगा। यत्न में रखे पुष्पों और मालाओं की वर्षा मल्लिका के रथ पर होने लगी। अधिकांश पुष्प और मालाएं रथ को स्पर्श कर मार्ग पर गिर जाते। कुछ पुष्प और मालाएं रथ के भीतर पहुंच पुष्पों के अंबार पर गिर फिसल कर नीचे आ जाते। मल्लिका कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कर जोड़े स्मित वंदन मस्तक नवा दृष्टि की पहुंच तक फैले उद्वेलित नरमुंडों के सागर का अभिवादन स्वीकार कर चुकी थी। मंडप में पहुंचकर नर्तकी ने विशिष्ट पुरुषों का आदर ग्रहण किया और गणपति के समीप आसन पर बैठ गई। देवी के रथ के पीछे छह रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं कला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थी। चारण ने पुनः तुर्य बजाया। मंगलवाद्य रुक कर भेरी बजने लगी। नृत्य संगीत से पूर्व तक्षशिला और मगध से शास्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण कर आए युवकों के शास्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही अभिजात युवक मद्र गणराज की सेना में पदों के अधिकारी होते थे। चारण ने घोषणा की, धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा के पुत्र आयुष्मान विनय शर्मा, महासामंत सवार्थ के पुत्र आयुष्मान इंद्रदीप, गणसंवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान वसुधीर, गणपूरक सामंत कार्तवीर के पुत्र आयुष्मान सुकिद, महासाल समर्थक के पुत्र आयुष्मान विष्णेश और महाश्रेष्ठ प्रेस्थ के पुत्र आयुष्मान पृथ्वसेन। छह युवक सैनिक वेश में शरीर पर वर्म और सिर पर सिरत्राण पहने, कंधे पर धनुष तीर्ण बांधे, कमर से खड़ग लटकाए, हाथ में भाला लिए वेदी पर आए। युवकों ने मद्र के गणराज के गणपति और महासेनापति वयोवृद्ध मिथोदस के आसन के सम्मुख उपस्थित होकर नासिका के सम्मुख अपनी खड्ग सीधी कर मस्तक झुकाकर निवेदन किया, मध्य के गणराज की सांगल नगरी का निवासी है मैं अमुक नाम अमुक पुत्र, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर मध्य के गणराज की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। गण मेरी योग्यता की परीक्षा कर मुझे सैनिक कार्य में मेरे योग्य पद प्रदान करें। गणपति ने युवकों को लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए सावधान होने का आदेश देकर स्वयं सेवा में उपस्थित सैनिकों को संकेत दिया। युवकों के धनुषों पर बाण खींचे थे। सैनिक के मंडप के वितान की ओर अनेक रंग के कंदुक उछाले आरंभ हुए। जनसमूह कठिन लक्ष्य भेद के प्रति कौतुक से और लक्ष्य भ्रष्ट बाणों की आशंका से सिहर उठा। युवक अनेक कंदुओं को अधर में ही वेध रहे थे। सेनापति और निर्णायक ध्यान से देख रहे थे कौन युवक कितनी बाणों में कितने कंदुकों को वेधता है। महासेनापति ने हाथ उठाकर लक्ष्य भेद परीक्षा समाप्त होने का संकेत किया। महासेनापति ने युवकों को कवच उतार अपने विशेष भरोसे का एक एक शस्त्र चुन लेने की आज्ञा दी। आयुष्मान इंद्रदीप और विनय शर्मा ने भाले लिए और शेष युवकों ने खंग। महासेनापति ने निर्देश दिया, प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों को आक्रमणकारी मानकर अपनी रक्षा करते हुए आक्रमणकारियों पर आघात करे। उन्होंने चेतावनी दी, आघात करने का अर्थ गहरा आघात करना नहीं। कोई युवक किसी प्रकार की अभिसंधि या पक्षपात का व्यवहार न करे। यह दोनों कार्य गणराज्य के धर्मास्थान द्वारा अपराध रूप में दंडनीय होंगे। महासेनापति ने वायु में उत्तरी हिलाकर युद्धारंभ का संकेत किया। मंडप में अनेक विद्युत शिखाएं चमक गई और फिर छह युवक छह स्थानों पर आक्रमण के लिए पीठ को धनुषाकार किए नख और दांत निकाले व्याघ्रों की भांति कांपने लगे। प्रत्येक की दृष्टि सबकी ओर थी। उनके हाथों के शस्त्र क्षण भर के लिए वितान के नीचे प्रकाश की रेखाएं से कौधाकर पुनः कंपित दीप शिखा की भांति उनके हाथों में स्थिर हो जाते। अस्तभ्य श्वास आंखें फैलाए विशाल जनसमूह योद्धाओं की सूक्ष्मतम गतियों और इंगुतियों के प्रति सतर्क था। वे रह रहकर झपटते, दर्शक के शरीर कंटकित हो उठते, योद्धाओं के स्थान बदल जाते और वे मंद वायु से स्फुरित दुर्वार तृणों की भांति कांपते रह जाते। कुछ ही क्षणों में उनकी तनी हुई गिरवा, वस्त्र रहित भुजदंड, लोमपूर्ण वक्षस्थल और गहरी पीठ पर श्वेत बिंदु झलक कर धाराएं बहर निकली। उनके शरीर पर कई स्थानों में लाल रेखाएं फूट कर रक्त बह गया। स्वेद में रक्त फैल जाने से उनके शरीर गिरुए से पुते जान पड़ने लगे। महासेनापति के संकेत से चारण ने तूर्य बजाकर युद्ध कौशल समाप्त होने की घोषणा कर दी। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के सम्मुख उपस्थित हुए। आयुष्मान सुकृत और पृथ्वीसेन के शरीर पर केवल दो रक्त चिन्ह, आयुष्मान विषणेश के शरीर पर तीन और शेष युवकों के शरीर पर चार चार। गण परिषद के सदस्यों से परामर्श कर महासेनापति बोले, गण परिषद और जन सुने, आयुष्मान सुकृत और पृथ्वीसेन ने शस्त्र संचालन में विशेष कौशल प्रकट किया है। सदस्यों के विचार से पृथ्वीसेन का ही स्थान प्रथम होता, परंतु आयुष्मान ने अपने वाम पक्ष में अनेक व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय किया। आयुष्मान पृथ्वीसेन में सतर्कता की इस न्यूनता के कारण गण सर्वश्रेष्ठ खड़क धारी का सम्मान आयुष्मान सुकृत को देता है। महासेनापति ने श्वेत पुष्पों और हरित किसलय से बने मुकुट की ओर संकेत किया, बोले, नगर श्री देवी मल्लिका की शिष्याओं में जो युवती कला की प्रतियोगिता में सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त करेगी, वही अपने हाथों यह मुकुट सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी को प्रदान करेगी। चारण के तुर्यनाद करने पर जनसमूह में आनंदोल्लास से जय जय का कोलाहल उठ खड़ा हुआ। युवक अभिवादन कर वेदी के नीचे आ गए, परंतु आयुष्मान पृथ्वीसेन महासेनापति के आसन के सम्मुख खड़ा रहा। खड्गनाशिका के सम्मुख सीधी रख मस्तक झुकाकर पृथ्वीसेन ने प्रार्थना की, मैं महाश्रेष्ठी प्रेस्त का पुत्र पृथ्वीसेन परम भट्टारक गणपति के सम्मुख निवेदन की आज्ञा चाहता हूँ। महासेनानी के जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के उत्तर में पृथ्वीसेन ने निवेदन किया, मैं पृथ्वीसेन परम भट्टारक गणपति की आज्ञा से गण के विचारार्थ निवेदन करता हूँ। मैंने अपने वाम पक्ष में व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। गणपति और सदस्य देखें, मैंने केवल पांच शत्रुओं का नहीं अपुत कदली स्तंभ के रूप में छठे शत्रु का भी सामना किया है। महासेनापति की अनुमति से मैं दिखाना चाहता हूँ। पृथ्वीसेन ने मंडप की बाम दिशा में स्तंभ के समीप जाकर उसके आश्रित पड़े कदली वृक्ष को हिला दिया। कदली स्तंभ खंड खंड होकर गिर पड़ा। जनसमूह में इस अपूर्व खड़ कौशल और हस्तलाघव की प्रशंसा में साधुवाद के उल्लास का रव उठ खड़ा हुआ। विनय से मस्तक झुकाकर पृथ्वीसेन ने महासेनानी को संबोधन किया, देव, इस शत्रु का भी मैंने पराभव किया है, मैं देव का निर्णय चाहता हूँ। महासेनापति विस्मय से उच्छ्वास में अपने आसन से उठकर पृथ्वीसेन के कंधों पर हाथ रखकर बोले, मेरे निर्णय में भूल थी। आयुष्मान पृथ्वीसेन सांगल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी है। गणपतिषद ने साधु साधु तथास्तु कहकर समर्थन में सिर हिलाए। जन समुदाय उल्लास से पुनः हिलोर उठा, परंतु गणपतिषद की पंक्ति में से गणसंवाहक आचार्य प्रवर्धन ने उठकर आपत्ति की, परिषद के सदस्य विचार करें, क्या गणपति का एक बार दिया निर्णय परिवर्तित हो सकता है? गण परिषद के सदस्य, विशिष्ट समाज और जनसमूह विस्मय और आशंका से मौन रहकर आचार्य की ओर देखने लगे। वयोवृद्ध महासेनापति ने अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व ऊर्ध्वबाहु होकर विशिष्ट गण और जन को संबोधन किया। गण परिषद, सामंतगण, अभिजात कुल और सांगल का जन समाज महापंडित गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन की आपत्ति सुने और विचार करे। मेरी परख से जो भूल हुई उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वृद्धावस्था के कारण मेरे नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है। मेरे दृष्टि दोष के कारण आयुष्मान के प्रति अन्याय उचित नहीं। यदि एक गण का मुझ पर विश्वास है तो भ्रांति मार्जन का अवसर मुझे दें। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट जन अवाक परस्पर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगे और जनसमूह उत्सुकता से विशिष्ट समाज की ओर। महासेनापति अपने आसन के समीप वेदी पर खड़े रहे। उन्होंने पुनः संबोधन किया। गण परिषद निर्णय करे, उन्हें मेरे भ्रांति मार्जन करने में आपत्ति है। महासेनापति ने सभी ओर अनुमति के संकेत में सिर हिलते देखकर पुनः घोषणा की, मैं मध्य के गणराज की परिषद का गणपति मिथोद्रस महासेनापति की स्थिति में दिए गए अपने निर्णय में महासेनापति की स्थिति में किए गए मार्जन को स्वीकार करता हूँ। जिस आयुष्मान की आपत्ति हो प्रकट करे। सब ओर मौन देखकर उन्होंने पुनः आसन ग्रहण किया। जनसमूह ने एक अस्पष्ट गुंजन द्वारा अपना संतोष और अनुमति प्रकट की। पुनः चारण का तुर्य बजा और वेदी से अनेक प्रकार की वीणाओं, वंशियों, मुरजों, काश्यतालों और मृदंगों की ध्वनि उठने लगी। यह नृत्य संगीत आरंभ होने वाले की सूचना थी। वाद्यों के स्वर मिल जाने पर मल्लिका ने शिष्यारूपी उडगण के मध्य चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल विनिदनित स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनकी शिष्याओं ने अस्थाई और अंतरा में सहयोग देकर सभास्थल को गुंजा दिया। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किसलय कोमल अंगुलियों और मृणाल बाहियों से संगीत के आरोहावरोह को इंगित कर रही थी। शिष्याओं के कंठ और वादक के यंत्र से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके इंगित का अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत की लहरों से भर गया। राग समाप्त हो जाने पर भी जनसमूह मंत्रमुग्ध सहस्त्र शेषनाग की भांति स्तब्ध और एक प्राण बन रहा। वाद्य अब सटजी के स्वर बजा रहे थे। मल्लिका से संकेत पाकर माधुलिका ने आलाप आरंभ किया। माधुलिका के पश्चात कुसुम सेना और उसके पश्चात दिव्या ने, इनके पश्चात नर्तकी वसुमित्रा ने अपने समाज सहित गायन किया। आत्मविस्मित जन स्वर द्वारा उत्पन्न भावों की लहरों में बहा जा रहा था। देवी मल्लिका ने आसन से उठकर जन का अभिवादन कर कृतज्ञता से मृदु स्वर में सूचना दी, कलावित समाज अनुमति दे तो संगीत समारोह समाप्त कर नृत्य आरंभ किया जाए। मंत्र के सम्मोहन से मुक्त होकर सभा ने अपने श्वास की अवरुद्ध गति को स्वतंत्रता दी। दीप दंडधारियों ने अपने दीपों में यथेष्ट तेल देने का अवसर पाया। दीप तेल के अभाव से मंद हो गए थे, परंतु संगीत की मधुर मूर्छा में विस्मित जन प्रकाश की न्यूनता अनुभव न कर पाया था। वेदी उज्ज्वल प्रकाश में दीप्त हो गई। वाद्यों के स्वर बदल गए। मल्लिका शिष्याओं के मध्य में वेदिका पर आई। जन के अपलक नेत्र उस ओर केंद्रित हो गए। रास नृत्य आरंभ हुआ। आकाश गंगा में भंवर आ गया। इसके पश्चात का नृत्य एक रूपक था। मल्लिका मेघनाथ माघव की भूमिका में थी और उसकी शिष्याएं वर्षा के लिए आकुल पृथ्वी, मात्यलोक के प्राणियों, मनुष्यों, जीव जंतुओं और वनस्पति की भूमिका में थी। शिष्याओं ने आराध्य देव इंद्र की को केंद्र बनाकर भावभंगी द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना की। मेघराज रौद्र मुद्रा में अद्रवित रहे। याचकों ने लावण्य के संयोग से करुणा का अदमनीय उद्रेक कर अपने अनुनय को अनुपेक्षणीय बना दिया। इंद्र दवित होकर बरस पड़े। धरती माता अपनी संतति सहित विभोर हो उठी। जनसमूह अपने संपूर्ण चेतना कला की ग्राहता में अर्पण कर अपलक, अवाक और मुक्त उष्ठ रह गया। दर्शक को कुछ क्षण के लिए प्रकृतिस्थ होने का अवसर देकर माधुलिका ने इस पर्व के लिए तैयार किया गया विशेष नृत्य अभिसारिका की यात्रा प्रस्तुत किया। कुसुम सेना ने उर्वशी प्रणय निवेदन और अंत में दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। मल्लिका उत्सव के एक पक्ष पूर्व से ही दिव्या को इस नृत्य की मुद्राओं और वादकों के संगीत की मूर्छनाओं का अभ्यास करवा रही थी। दिव्या राजहंस के परों के समान श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई। उसकी कोमल सुगोल बाहुओं से झीने श्वेत उत्तरी के छोर मराली के पंखों के रूप में लटक रहे थे। मराली खोज की मुद्रा में उद्युग्न और चिंताशील थी। नेपथ्य से राजहंस का ऋतुकालीन आवाहन सुनाई दिया। टोह पाकर मराली उत्साहित हो उठी। उत्साह और उमंग से परों को फड़फड़ाकर वह आवाहन की दिशा और स्थान खोजने के लिए चली और बधिक के जाल में फंस गई। राजहंस का प्रत्येक आवाहन वधिक पास में फंसी हुई राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था। वह मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। क्लांत राजहंसी की मुद्रा में नैराश्य और अवसाद प्रकट होने लगा। वह निराशा के विरुद्ध मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगी। उसका संघर्ष असफल रहा। राजहंस का स्फूर्तिदायक आवाहन मार्मांतक वेदना का कारण बन गया। उसकी ग्रीवा निराशा भरे प्रयत्नों में उठ उठ कर रह आती। उसके पंख फड़फड़ा कर रह जाते। राजहंस की भूमिका में स्वयं मल्लिका प्रकट हुई। राजहंस मराली को बांधे जाल की उपेक्षा कर मराली के समीप कूद गया। मराली विभोर हो उठी। राजहंस भी बध गया, परंतु किल्लोल उन्मुक्त होकर उन्होंने बंधन की चिंता न की। वे मधुर शैथिल्य में आत्मविस्मित होकर बंधन से निरपेक्ष थे। अनेक हंसावक उस मराल मिथुन से उड़ उड़ कर चारों दिशा में फैलने लगे। उत्साहित जनसमूह के उत्साह भरे साधुवाद से आकाश गूंज उठा। असंख्य मुखों के उन्मुक्त उच्छ्वास के वायु से मंडप का वितान हिलोरे लेने लगा और दीपदंडों की ज्वालाएं कांपने लगी। मंडप के समीप ही साधारण जन के समूह से एक काशकाय चीवरधारी भिक्षु के ऊर्ध्वबाहु खड़े होकर गंभीर स्वर में जन को उद्बोधन किया। बुद्धिमान जन देखें और जाने, माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है। मल्लिका आदर और साधुवाद ग्रहण करने के लिए अपने आसन पर खड़ी थी। उसने निरुत्साह से भिक्षु की ओर देखा। गण परिषद विशिष्ट अतिथि और जन विस्मय से भिक्षु की ओर देख रहे थे। चारों ओर छाई स्तब्धता में ऊंचा स्वर सुनाई दिया, भंते, दुख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीरु की आत्म प्रवंचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। सभास्थल अट्ठास से गूंज उठा। मल्लिका और समाज ने देखा, उत्तर देने वाला सांगल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिकता और अनैतिकता के प्रतिपादन का अपवाद पाने वाला श्रेष्ठ उपासक पुष्यकांत का पुत्र युवक मारिस था। कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका के निर्णय और परिषद की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री आयुष्मती कुमारी दिव्या को भेंट किया और कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी का पुष्प मुकुट कुमार पृथ्वीसेन को। दोनों ही पुरस्कार विजेता अपनी कला के वेश में साधारण नागरिकों से भिन्न अपनी कला के प्रतीक मात्र जान पड़ रहे थे। कुमारी दिव्या शुभ्र वायवीय श्वेत उत्तरियों में मराली का प्रतिरूप और कुमार पृथ्वीसेन नासिकाग्र और कंधों तक छाए सिर त्राण और वर्ग में शस्त्र शक्ति की मूर्ति की भांति। चारण ने उत्साह विसर्जन का तुर्य बजा दिया। रात्रि के दो पहर बीत जाने पर भी जनता शांति अनुभव न कर विश्राम के लिए व्याकुल न थी। पूर्ण चंद्र चैत के स्वच्छ ताराकिरण आकाश में अपनी दिशा में चला जा रहा था। विराट जनसमूह दीप दंडों के प्रकाश की उपेक्षा कर मल्लिका और योद्धाओं के मार्ग के दोनों ओर टूट पड़ा। राजपुरुष कठिनता से मार्ग की रक्षा कर रहे थे। सांगल की प्रथानुसार सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती की पुष्पों से आच्छादित शिविका अभिजात वंश के युवक अपने कंधों पर युवती के गृहद्वार तक ले जाते थे। कुमारी दिव्या अपने प्रपितामह पितृव्यों भाइयों और संबंधियों से आशीर्वाद और स्नेह पाकर संकोच से शिविका पर बैठ गई। अभिजात वंश के युवक उसकी शिविका के दंडों की ओर बढ़े। चार दंडों में 16 से अधिक कंधों के लिए स्थान न था। शिवका के अग्रदंड से पहले से कंधा दिए पृथ्वीसेन को धकेल कर कुमार वसुधीर ने स्थान लेना चाहा। पृथ्वीसेन ने अपना स्थान न छोड़ने का आग्रह किया। गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र वसुधीर के ज्येष्ठ आयुष्मान रुद्रधीर ने ललकारा, दास पुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। पृथ्वीसेन कट से खड़ग खींच पैतरे से खड़ा हो गया और बोला, मेरे अधिकार का निश्चय मेरा खड्ग करेगा। शिविका के चारों ओर अनेक खड्ग कोसों से निकल आए। अनेक वायुवृद्ध गुरुजनों के बीच में आकर वारणा और भत्सना करने से अधिक विशृंखला और रक्तपात न हो पाया। सरस्वती पुत्री की शिविका देवी मल्लिका के रथ के सम्मुख जनता के जय जयकार के कोलाहल के बीच अभिजात वंशी युवकों के कंधे पर मुंड प्रवाह के ऊपर ऊपर क्षुब्ध लहरों में दुलायमान नौका की भांति डगमगाती नगरों की ओर चली गई। कुमार पृथ्वीसेन घायल व्याघ्र के समान क्रोध से कांपता हुआ कुछ समय तक चंद्र के स्निग्ध प्रकाश में अपने अश्वरक्षक के समीप खड़ा रहा। हृदय में प्रज्वलित क्रोध की अग्नि का धुआं मस्तिष्क में घुट जाने के कारण वह क्षुब्ध और विह्वल हो उठा। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य देव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की? हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है? पृथ्वीसेन मन में उबलती घृणा और प्रतिहिंसा के लिए मार्ग न पा क्रोध में दांतों से ओठ दबाए समूह से बचता हुआ अपने प्रसाद की ओर चला गया।